पूरी बाइबल एक कहानी है। यह एक वाटिका से शुरू होकर एक नगर में खत्म होती है और इस पूरे सफर में यह यीशु मसीह की ओर इशारा करती है। उत्पत्ति में एक दंपति ने परमेश्वर की आशीष का आनंद लिया, परंतु पाप के कारण वे पीड़ा, दुख और मृत्यु से भरे संसार में चले गए। प्रकाशित वाक्य में लोगों के एक विशाल समूह को आनंद और शांति के संसार में लाया जाता है, जहां पाप और मृत्यु नहीं होंगे और परमेश्वर स्वयं हमारी आंखों से सारे आंसू पोंछ देंगे। 1750 नगर अपनी बाइबल में प्रकाशित वाक्य 22 खोले। बाइबल की शुरुआत परमेश्वर द्वारा आकाश और पृथ्वी की रचना से होती है। इसका अंत परमेश्वर द्वारा एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी की रचना के साथ होता है, जहां आदम ने जो कुछ खोया था वो सब वापस मिल जाएगा और इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिलेगा। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। यूहन्ना ने एक नई पृथ्वी देखी। नई का अर्थ है कि यह आश्चर्यजनक रूप से भिन्न होगी। पृथ्वी का अर्थ है कि यह विचित्र रूप से परिचित होगी। मसीही विश्वासी का भाग्य किसी काल्पनिक दुनिया में स्वप्न जैसा अस्तित्व नहीं है। परमेश्वर इस ग्रह का पुनः निर्माण, पुनः पूर्ति और नवीनीकरण करेंगे। सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। नए स्वर्ग और पृथ्वी का आनंद हमारी कल्पना से परे है, परंतु परमेश्वर दो चित्रों का उपयोग करके हमें भविष्य की एक झलक देते हैं। वे है नगर और वाटिका। यूहन्ना के दर्शन में इस समय तक, जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास का समापन हो चुका है। न्यूयॉर्क, लंदन, यरूशलेम, बीजिंग और मॉस्को सब खत्म हो गए। परमेश्वर के न्याय की प्रचंड तपेश में पृथ्वी उगर गई है। परंतु अब यूहन्ना एक नए नगर को स्वर्ग से उतरते हुए देखता है और तुरंत ही वो उसके क्षितिश को पहचान लेता है। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। बाइबल की कहानी में यरूशलेम का बहुत महत्व है। यह वो स्थान था जहां परमेश्वर अपने लोगों से मिलने के लिए नीचे आए थे, जब उनकी उपस्थिति का बादल मंदिर में भर गया था। नया यरूशलेम बहुत विशाल था। एक स्वर्गदूत ने अपनी छड़ी से नगर को नापा, 12,000 सीढ़ी। 12,000 सीढ़ी लगभग 2,250 किलोमीटर के बराबर है। याद रखें कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक चित्रों का उपयोग करके हमें उस महिमा को समझने में मदद कर रही है जो आगे आने वाली है। परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग इतने ज्यादा है कि कोई उनकी गिनती नहीं कर सकता, और परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि उनके यहां हम में से हर एक के लिए जगह है। शहर के माप 3 आयामों में दिए गए हैं। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। दूसरे शब्दों में यह एक पूर्ण घनाकार है। यूहन्ना ने इसका महत्व तुरंत समझ लिया होगा। मंदिर में सबसे पवित्र स्थान, जहां परमेश्वर अपने लोगों से मिलते थे, वह भी एक पूर्ण घनाकार था। 30 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 30 फीट ऊंचा। पुराने यरूशलेम में एक पवित्र स्थान था। पूरा नया यरूशलेम एक पवित्र स्थान है। पुराने यरूशलेम में एक छोटा सा कमरा परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ था। नए यरूशलेम में पूरा नगर उनकी महिमा से भर जाएगा। पुराने यरूशलेम में केवल एक ही व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकता था। नए यरूशलेम में परमेश्वर के सभी लोग सर्वदा उनका आनंद लेंगे। परमेश्वर जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं जब उन्होंने एक ऐसा संसार बनाया जिसमें हम विद्रोह करेंगे और अपने आप को निराशाजनक रूप से खोया हुआ पाएंगे। वे जानते थे कि एक छुटकारा पाई हुई सृष्टि उनकी महिमा को एक अनजान प्राणी की अपेक्षा कहीं अधिक प्रदर्शित करेगी। नई सृष्टि में परमेश्वर की महिमा के प्रतिबिंब हर जगह फूट पड़ेंगे, हम में और हमारे चारों ओर। जिन लोगों को अधिक क्षमा किया गया है वे अधिक प्रेम करेंगे और परमेश्वर के छुड़ाए हुए बच्चे गाएंगे, वध किया हुआ मेमना ही योग्य है। तू योग्य है क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। दर्शन में इस समय तक यूहन्ना ने नए यरूशलेम को बाहर से देखा है, परंतु अब उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित किया गया है। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है तस्वीर बदल जाती है और निसंदेह उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब यूहन्ना को एक सुंदर वाटिका दिखाई देती है। स्वर्गदूत फिर उसे जीवन के जल की नदी दिखाई और नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था। बाइबल की कहानी एक वाटिका से शुरू हुई जहां परमेश्वर ने आदम और हव्वा को 4 अद्भुत उपहार दिए, एक घर, कार्य, रिश्ता और परमेश्वर की दृश्य उपस्थिति। जब पाप संसार में आया तो इन सभी उपहारों में दोष आ गया। आदम और हव्वा को वाटिका से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें पाप, पीड़ा और मृत्यु से भरे संसार में अपना घर बनाना पड़ा। जो कार्य आशीष स्वरूप किया गया था उसमें निराशा छा गई थी। दुनिया का पहला परिवार विभाजित हो गया था और आदम और हव्वा को परमेश्वर के साथ दृष्टि के बजाय विश्वास से चलना पड़ा। जब पाप संसार में आया तो स्वर्ग खो गया, परंतु बाइबल की कहानी के अंत में जो उपहार खो गए थे वे न केवल पुनः प्राप्त हुए बल्कि परमेश्वर के नए उद्यान नगर में वे और भी बेहतर हो गए। सबसे पहला बेहतर घर। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। पुराने अदन और नई वाटिका के बीच एक उल्लेखनीय अंतर यह है कि परमेश्वर के नई वाटिका वाले नगर में अच्छाई और बुराई के ज्ञान का कोई वृक्ष नहीं है। वहां बुराई को जाना नहीं जा सकता। यह वाटिका न केवल उसकी उपस्थिति से बल्कि उसकी संभावना से भी मुक्त है। पुराने अदन में पुरुष और स्त्री को जीवन की वृक्ष से खाने की अनुमति नहीं थी, परंतु अब उन्हें पूरी अनुमति है और वृक्ष पर 12 अलग अलग प्रकार के फल लगे हैं। फलों की विविधता परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर प्राप्त होने वाली जीवन की समृद्धि की बात करती है। अनंत काल कभी भी नीरस नहीं होगा। इस संसार में जीवन की सबसे बड़ी खुशियां परमेश्वर की नई सृष्टि की महानतम खुशियों की ओर संकेत करती है। परमेश्वर की नई वाटिका नगर के सुख आदम द्वारा अदन की वाटिका में अनुभव की गई किसी भी चीज से बरकर होंगे। आप उन फलों का स्वाद चखेंगे जिन्हें आदम ने कभी नहीं चखा और उन सुखों का आनंद लेंगे जिन्हें हव्वा ने कभी नहीं जाना। दूसरा, बेहतर कार्य। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगन युग राज करेंगे। नई सृष्टि में आप सेवा करेंगे, आप आराधना करेंगे और आप शासन करेंगे। पहली वाटिका में आदम ने कार्य करके और वाटिका की देखभाल करके सेवा की। उसकी बुलाहट परमेश्वर द्वारा बनाई गई सभी चीजों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए थी। उसे पृथ्वी को भरना था और उस पर अधिकार करना था। जब सांप आया तो आदम ने अपना शासन कायम नहीं रखा, परंतु अब परमेश्वर के लोगों को सेवा करने और राज करने का पद पुनः प्राप्त हो गया है। जब परमेश्वर हमारे शासन करने की बात करते हैं तो वे हमें बता रहे हैं कि जीवन को व्यवस्थित किया जाएगा और आपके निरंतरण में लाया जाएगा। आपका कार्य निराशा से मुक्त रहेगा। अब आप समय के अत्याचार, थकाऊ कार्यों, झगड़ालू सहकर्मियों या दखल अंदाजी करने वाले प्रबंधकों के अधीन नहीं रहेंगे। अब आप अप्रत्याशित भावनाओं या इच्छा शक्ति के आवेगों में नहीं बहेंगे और अब आप खतरे या मृत्यु के अधीन नहीं होंगे। तीसरा, बेहतर संगत। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इसराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। पुराने अदन का आनंद केवल एक पुरुष और एक महिला ने उठाया था, परंतु अब एक विशाल भीड़ द्वार से अंदर आ रही है। परमेश्वर ने इन लोगों को मानव इतिहास के दर्द से छुटकारा दिलाया और उन्हें पहले से कहीं अधिक आनंद प्रदान किया है जितना कभी उन्होंने ना सोचा हो। यूहन्ना नए वाटिका नगर में 12 प्रवेश द्वार देखते हैं। लोग हर दिशा से नगर में आ रहे हैं, पूर्व में चीन, उत्तर में रूस, दक्षिण में अफ्रीका और पश्चिम में अमेरिका। हर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व परमेश्वर के छुड़ाए हुए और मेल मिलाप वाले नए समुदाय में किया गया है। यूहन्ना के दर्शन में प्रत्येक द्वार पर एक स्वर्गदूत खड़ा है और सभी द्वार खुले हैं। बाइबल की कहानी की शुरुआत में करूब जीवन के वृक्ष के प्रवेश द्वार पर ज्वलंत तलवार से पहरा देते थे, परंतु अब मसीह ने न्याय की तलवार तोड़ दी है और स्वर्गदूत उन सभी का स्वागत करने के लिए द्वार पर खड़े हैं जो उनके हैं। और चौथा, परमेश्वर का बेहतर ज्ञान। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। इस वाटिका नगर में परमेश्वर की उपस्थिति इसकी सबसे बड़ी आशीष है। अदन की वाटिका में परमेश्वर निश्चित समय पर नीचे आते थे और अपने आप को प्रकट करते थे। वे दिन की ठंडी हवा में उस आदमी और औरत के साथ टहलते थे। परमेश्वर एक आगंतुक के रूप में बगीचे में आए। उन्होंने स्वयं को पुरुष और स्त्री पर नहीं थोपा, बल्कि उन्हें अपने साथ विश्वास और आज्ञाकारिता का रिश्ता चुनने का अवसर दिया। इसलिए वे आए और उनके साथ चले तथा उन्होंने उस रिश्ते को विकसित किया। परंतु अब परमेश्वर ने लोगों का एक विशाल समुदाय इकट्ठा किया है, जिनके मन उनके सत्य से प्रकाशित हो चुके हैं और जिनके हृदय यीशु के क्रूस पर पिघल गए हैं। उनकी इच्छाएं पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा निर्देशित हुई है और वे परमेश्वर से स्वतंत्र रूप से प्रेम करने लगे हैं। तो परमेश्वर अब आगंतुक नहीं है, परमेश्वर का सिंहासन वाटिका नगर में उतर आता है ताकि उनके लोग उनकी उपस्थिति में रह सके और सदा उनका आनंद ले सके। प्रभु ने विजय के स्वर के साथ इसकी घोषणा की, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। तो आइए हम देखें कि आज हमने क्या सीखा। जब आपको घर जैसा महसूस ना हो तो याद रखें कि वह दिन आने वाला है जब आप इस दुनिया में किसी भी समय या स्थान से कहीं अधिक घर जैसा महसूस करेंगे। जब आपको अपना काम निराशाजनक लगे तो याद रखें कि वो दिन आने वाला है जब आप परमेश्वर द्वारा आपको दिए गए सभी कामों में आनंद और संतुष्टि पाएंगे। जब आप प्रेम के आनंद का अनुभव करें तो याद रखें कि यह उस आनंद का एक छोटा सा स्वाद है जो आप प्रभु की उपस्थिति में अनुभव करेंगे। जब आपके मन में कोई सवाल हो या आप अपनी आस्था से जूझ रहे हो तो याद रखें कि एक दिन आप परमेश्वर का चेहरा देखेंगे और जब आप उन्हें देखेंगे तो आप उनके जैसे हो जाएंगे।